नमस्कार, आज हम एक बहुत गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? ये सवाल सदियों से पूछे जा रहे हैं ना?
हाँ बिल्कुल, और ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आते ही हैं।
तो इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों को देखेंगे, खासकर उनकी जो पुस्तक है ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। कोशिश करेंगे कि उनके विचारों से कुछ ऐसी बातें निकालें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें।
और ये जानना जरूरी है, जैसे आपने कहा कि पूज्य गुरुदेव खुद को व्यक्ति नहीं मानते थे, वो कहते थे मैं एक विचार हूँ।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
उनकी शक्ति उनके विचारों में थी और उनका मानना था कि इन विचारों में दुनिया बदलने की ताकत है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम उन विचारों को समझें ताकि हम, मतलब हम सब, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को थोड़ा बेहतर बना सकें।
बिल्कुल, तो चलिए पूज्य गुरुदेव के नज़रिए से ईश्वर के इस रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बस उन विचारों को सामने लाना है जो शायद हमें रोज़ की ज़िंदगी में कोई दिशा दे सके। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, क्या ईश्वर है? हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से इस विशाल ब्रह्मांड का कितना सा जान पाते हैं? बहुत थोड़ा है ना?
हाँ, बहुत ही कम।
पर जितना भी देखते हैं उसमें गजब की व्यवस्था दिखती है। सूरज, चांद, तारे, सब कुछ बिल्कुल नियम से चल रहा है। दिन रात का होना, बचपन जवानी बुढ़ापा, बीच से पेड़, फूल से फल, सब एक क्रम में बंधा हुआ है। क्या ऐसा बिना किसी चलाने वाले के अपने आप हो सकता है?
पूज्य गुरुदेव इसी तर्क को सामने रखते हैं। उनका कहना है कि भाई, जब हमारे छोटे छोटे काम, रोजमर्रा के काम, बिना किसी योजना या व्यवस्था के ठीक से नहीं चलते,
हाँ सही बात है। हाँ,
ये इतनी बड़ी, इतनी जटिल सृष्टि, ये बिना किसी संचालक शक्ति के कैसे चल सकती है? अरे, मानव शरीर को ही देख लीजिए, कितना अद्भुत, कितना जटिल है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे पूरी तरह बना नहीं पाया। तो ये सारी व्यवस्था, ये जटिलता, ये सब इशारा करती है कि कोई न कोई महान शक्ति, कोई बनाने वाला इसके पीछे जरूर है।
लेकिन फिर वही सवाल कि अगर है तो हम उसे अपने इंद्रियों से अनुभव क्यों नहीं कर पाते, देख क्यों नहीं पाते?
बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब ये है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, वो उस परम शक्ति को सीधे सीधे नहीं पकड़ सकती। पर आप सोचिए, ऐसी कितनी चीजें हैं दुनिया में जिन्हें हम सीधे देखते नहीं फिर भी मानते हैं।
हाँ हैं तो।
अनुमान के आधार पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं। जैसे ये कलम है जिससे लिखा जा रहा है, हमने इसे बनाने वाले को शायद नहीं देखा, पर हम जानते हैं कि कोई ना कोई तो है जिसने इसे बनाया है।
हाँ ये तो है।
बिल्कुल, तो उसी तरह ये सृष्टि की रचनाएं, ये अपने रचयिता का, अपने बनाने वाले का सबूत है। अब देखिए, विज्ञान शायद इसी शक्ति को प्रकृति कह दे या कुदरत के नियम, अध्यात्म उसे ईश्वर कहता है।
हाँ,
नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर एक अदृश्य नियामक सत्ता, एक चलाने वाली शक्ति की मौजूदगी को लगभग सभी मानते हैं। मूल बात यह है कि व्यवस्था बताती है कि कोई व्यवस्थापक है।
ठीक है, मान लिया कि कोई ऐसी शक्ति है, तो फिर वो है कैसी? उसका स्वरूप क्या है? क्या उसका कोई रूप है, कोई आकार जैसा हम सोचते हैं?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार ईश्वर असल में एक आद्य बीज शक्ति है, मतलब सबसे पहली मूल ऊर्जा, बीज की तरह।
अच्छा,
और ये निराकार है, इसका कोई एक फिक्स रूप या आकार नहीं है।
निराकार?
हाँ, निराकार। लेकिन कमाल ये है कि इसी निराकार शक्ति से ये सारी साकार दुनिया, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, वो बनता भी है और चलता भी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हवा, हवा हर जगह है पर दिखती नहीं, या गर्मी, वो महसूस होती है दिखती नहीं। वैसे ही ईश्वर की चेतना बहुत ही सूक्ष्म रूप में हर कण-कण में मौजूद है।
अच्छा, जैसे बल्ब में बिजली होती है, दिखती नहीं पर बल्ब जलता है उससे।
हाँ बिल्कुल, वैसा ही, बहुत अच्छा उदाहरण है। यही मूल ऊर्जा, ये आद्य बीज शक्ति, आग में गर्मी बन जाती है, चुंबक में खिंचाव बन जाती है, हर अणु परमाणु में गति बनकर प्रकट होती है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये शक्ति दो मुख्य रूपों में जाहिर होती है, एक तो पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बनता ये जड़ जगत, मतलब पदार्थ।
अच्छा,
और दूसरा रूप है सच्चित आनंद, यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद, इससे बनता है चेतन जगत यानी जीवन।
ओके,
तो इसलिए वो सर्वव्यापी है, हर अणु में, चाहे पत्थर हो या कोई प्राणी।
पर अगर वो हर जगह एक समान है तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि कहीं उसकी मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है, कहीं कम? जैसे लोग कहते हैं ना कि तीर्थों में, पवित्र स्थानों पर ईश्वर का अनुभव ज्यादा होता है।
हाँ, ये भी एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। पूज्य गुरुदेव इसे एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, आग तो हवा में हर जगह है, पर चूल्हे के पास जाओ तो उसकी गर्मी ज्यादा महसूस होती है, दूर रहो तो कम।
हाँ, सही है,
है ना? तो इसी तरह ईश्वर की शक्ति, उसकी चेतना तो हर जगह एक बराबर फैली हुई है, पर उसकी अनुभूति, उसका एहसास इस बात पर निर्भर करता है कि उस जगह की या उस व्यक्ति की पात्रता कैसी है, मतलब वहां का माहौल कैसा है। जहां सत्य है, प्रेम है, न्याय है, विवेक है, ऐसे अच्छे गुण जहां ज्यादा होते हैं, सदाचार होता है, वहां ईश्वरीय चेतना ज्यादा साफ महसूस होती है।
अच्छा, गुणों पर निर्भर करता है।
हाँ, और इसके उलट, जहां पाप है, नफरत है, अन्याय है, बुराई है, वहां ये चेतना जैसे ढकसी जाती है, कम महसूस होती है। तो ये जगह की शुद्धता और वहां मौजूद गुणों पर निर्भर है। शक्ति तो हर जगह है।
ये दिलचस्प बात है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि को चलाता कैसे है, इसे बनाने का उसका मकसद क्या हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और पूज्य गुरुदेव भी मानते हैं कि सृष्टि क्यों बनी, इसका पूरा रहस्य, अंतिम कारण जानना शायद इंसान की बुद्धि से परे है। शास्त्रों में इसे अक्सर ईश्वर की लीला कहा गया है, मतलब एक खेल। एक विचार ये भी है, एको अहम बहुस्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं।
एक से अनेक।
हाँ, शायद उस एक परम शक्ति ने खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही ये इतनी विविधता वाली दुनिया बनाई। लेकिन पूज्य गुरुदेव एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं, विकासवाद, यानी एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन,
हाँ, हम देखते हैं ना कि हर जीव में, हर चीज में एक अंदरूनी इच्छा, एक प्रेरणा होती है आगे बढ़ने की, बेहतर होने की, छोटे से बड़ा बनने की, अंधेरे से उजाले की ओर जाने की एक सहज प्रवृत्ति है उन्नति की तरफ। शायद यही ईश्वरीय इच्छा है या ईश्वरीय आदेश है कि जीवन लगातार विकसित हो, पूर्णता की ओर बढ़े।
तो क्या ईश्वर हमारे हर काम में, हर एक्शन में सीधा दखल देता है? क्या वो कंट्रोल करता है?
यहाँ पूज्य गुरुदेव का नजरिया बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं वैज्ञानिक जैसा है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के नियम बना दिए हैं, बिल्कुल सटीक नियम, और फिर सृष्टि को उन नियमों के हिसाब से चलने की स्वतंत्रता दे दी है।
अच्छा, मतलब नियम बना दिए और छोड़ दिया।
हाँ, एक तरह से जैसे कोई घड़ी बनाने वाला घड़ी बनाकर उसमें चाबी भरकर उसे अपने आप चलने के लिए छोड़ देता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की पूरी आजादी दी है। हम अच्छा करें या बुरा, ये हमारी मर्जी है।
लेकिन
हर कर्म का नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, ये व्यवस्था भी उसी ने बनाई है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। इसे समझाने के लिए शास्त्रों में चित्रगुप्त का प्रतीक है, जो हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं।
हाँ, सुना है।
मतलब साफ है, जो बोएंगे वही काटेंगे। हर एक्शन का रिएक्शन होगा, हर कर्म का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। और ईश्वर, वो खुद इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी पक्षपात के एकदम साक्षी भाव से देखता है। वो बस नियमों को काम करते हुए देखता है। जो नियमों का पालन करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, जिसे हम कृपा कह सकते हैं। जो नियमों को तोड़ते हैं उन्हें बुरा फल मिलता है, जिसे दंड कह सकते हैं। ये सब बिल्कुल स्वाभाविक है, नियमों के अनुसार।
अच्छा, तो फिर ये जो पूजा पाठ है, मंदिरों में जाना, मूर्तियों की उपासना करना, ये सब क्यों, अगर सब कुछ कर्मों का ही खेल है तो?
ये बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल है। पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि पूजा उपासना का मकसद ईश्वर को खुश करना नहीं है या उसे रिश्वत देना नहीं है, क्योंकि वो तो इन सब भावनाओं से, निंदा स्तुति से परे है। वो निष्पक्ष है।
तो फिर क्यों करते हैं?
उपासना का असली मकसद है उपासक का खुद का सुधार, आत्म परिष्कार। देखिये, हम जो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं या तस्वीरें देखते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, माँ दुर्गा, ये वास्तव में ईश्वर के अलग अलग गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं।
गुणों के प्रतीक।
हाँ, जैसे राम मर्यादा के प्रतीक हैं, कृष्ण कर्म योग के, शिव वैराग्य के, दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। तो साधक क्या करता है, वो इन प्रतीकों को, इन मूर्तियों या चित्रों को ध्यान का आलंबन बनाता है, मतलब एक फोकस पॉइंट। वो मूर्ति या चित्र पर ध्यान लगाकर, प्रार्थना करके ये कोशिश करता है कि ये जो दिव्य गुण हैं, ये मेरे अंदर भी आ जाएं।
अच्छा, तो मतलब मूर्ति पूजा अपने आप में मंजिल नहीं है, वो एक तरीका है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है उन गुणों तक पहुंचने का।
हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, ये एक साइकोलॉजिकल तकनीक है। जैसे कोई स्टूडेंट किसी महान वैज्ञानिक की तस्वीर अपने कमरे में लगाता है उससे प्रेरणा लेने के लिए,
हाँ,
वैसे ही साधक अपने इष्ट देव के रूप और गुणों का चिंतन करता है ताकि वो गुण उसके अपने जीवन में उतरें। पूज्य गुरुदेव ने एक और साधना बताई है, सोहम साधना, इसका भी जिक्र किया है।
सोहम साधना वो क्या है?
इसमें अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि या भावना करते हैं, जिसका अर्थ है वो परमात्मा, मतलब दिव्य शक्ति मेरे अंदर आ रही है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि या भावना करते हैं, जिसका अर्थ है मैं, मेरा अहंकार, मतलब मेरे दोष, मेरा अहंकार बाहर जा रहा है। ये अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सरल सहज अभ्यास है।
और इस तरह की जो सच्ची उपासना है उसका नतीजा क्या होता है, फायदा क्या है?
किसी भी तरह की सच्ची उपासना, चाहे वो मूर्ति के माध्यम से हो या निराकार ध्यान हो, उसका असली फल उपासक के व्यक्तित्व का विकास है। उसके अंदर धीरे धीरे दैवीय गुण जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, सेवा की भावना, समता, न्याय, उदारता, ये सब बढ़ने लगते हैं।
अंदरूनी बदलाव।
हाँ, मन शांत होता है, एकाग्र होता है और धीरे धीरे उसे ईश्वर के साथ एक जुड़ाव, एक तन्मयपा, एक गहरा आनंद महसूस होने लगता है। जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से सात्विक गुणों से भर जाता है और वो उस दिव्य चेतना और आनंद में स्थित हो जाता है, उसी अवस्था को ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये अंदरूनी बदलाव ही असल उपलब्धि है।
पूज्य गुरुदेव में वैदिक ईश्वरवाद के चार मूल सिद्धांत भी बताए हैं, वो क्या हैं और आज के समय में उनका क्या मतलब समझा जाए?
हाँ, उन्होंने वैदिक ईश्वरवाद के चार आधार बताए हैं। पहला ये कि ईश्वर हमारे छिपे हुए कर्मों और यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी जानता है, वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ और सबसे शक्तिशाली बलवान है।
ठीक है।
दूसरा, वो प्रसन्न होने पर सुख समृद्धि देता है और अंत में मोक्ष भी देता है। तीसरा, वो नाराज होने पर कई तरह के कष्ट दे सकता है, दैविक, दैहिक, भौतिक। और चौथा, वो अच्छे आचरण यानी धर्माचरण और उपासना से खुश होता है और बुरे काम करने वालों या नास्तिकों से नाखुश रहता है।
लेकिन ये सुनकर तो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे ये ईश्वर के नाम पर डर और लालच दिखाने जैसा नहीं है कि अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा करोगे तो सजा।
हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, पर पूज्य गुरुदेव इसे एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के तौर पर समझाते हैं। देखिए, इंसान के अंदर अच्छी भावनाएं भी हैं और बुरी वृत्तियां भी हैं, स्वार्थ, गुस्सा, लालच, वासना।
हाँ, वो तो हैं।
तो समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन बुरी वृत्तियों को कंट्रोल करना जरूरी है। प्राचीन ऋषियों ने ये ईश्वरवादी ढांचा शायद इसीलिए बनाया था। जैसे आज समाज में अपराध रोकने के लिए पुलिस का, कानून का डर काम करता है ना?
हाँ, बिल्कुल।
वैसे ही पहले ईश्वरीय न्याय का विश्वास, ये डर कि ईश्वर सब देख रहा है और कर्म का फल देगा, ये लोगों को गलत काम करने से रोकता था और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता था। इसका असली मकसद समाज को नैतिक और व्यवस्थित रखना था।
एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर के नाम पर जो ढोंग फैला है, जो गलत धारणाएं हैं, उनकी भी बहुत आलोचना की है। उन्होंने इसे पाप प्रपंच कहा है, इसके बारे में कुछ बताइए।
जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि कैसे समय के साथ कुछ स्वार्थी लोगों ने ईश्वर की इतनी पवित्र अवधारणा को अपने मतलब के लिए बिगाड़ दिया। उन्होंने ईश्वर को भी इंसानों जैसा बना दिया, कोई अमीरों का भगवान तो कोई गरीबों का, कोई रिश्वत लेकर काम करने वाला भगवान तो कोई बिना कर्म फल भुगते ही पाप माफ कर देने वाला।
हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं।
कर्म फल का जो अटल सिद्धांत है उसे भुला दिया गया और ये भ्रम फैलाया गया कि बस कुछ पूजा पाठ कर लो, कुछ कर्म कांड कर लो, चाहे जीवन भर कितने भी बुरे काम करो, स्वर्ग मिल जाएगा या सारे पाप धुल जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने ऐसी मान्यताओं को बहुत कड़े शब्दों में अफीम की गोली कहा है।
अफीम की गोली?
हाँ, जैसे अफीम का नशा होता है ना, वो इंसान को उसके असली कर्तव्यों से भटका देता है, उसे एक झूठे सुख में सुला देता है, वैसे ये गलत धारणाएं, ये अंधविश्वास लोगों को अच्छे कर्म करने, जिम्मेदार बनने से हटाकर बस कर्म कांडों और अंधविश्वासों में फंसा देते हैं, उन्हें कर्तव्य विमुख बना देते हैं। सच्चा धर्म और सच्ची ईश्वर उपासना इससे बिल्कुल अलग है। वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, जिम्मेदार बनाने के लिए है, ना कि बुरे कामों पर पर्दा डालने के लिए।
तो पूज्य गुरुदेव के इन सब विचारों को अगर हम देखें तो ईश्वर की एक बहुत ही स्पष्ट, तर्कसंगत और व्यावहारिक तस्वीर उभरती है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है।
नहीं,
बल्कि वो एक सर्वव्यापी शक्ति है, एक नियम से चलने वाली चेतन ऊर्जा है जो सत चित आनंद स्वरूप है। मतलब अस्तित्व, चेतना और आनंद ही उसका रूप है और वही पूरी सृष्टि का आधार है।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिरों या मूर्तियों में ढूंढने के बजाय उसे अपने अंदर महसूस किया जा सकता है।
कैसे?
अपने अंदर अच्छे गुणों को जगाकर, सृष्टि के नियमों का, यानी जिसे हम धर्म कहते हैं, उसका पालन करके और सभी प्राणियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करके।
और पूजा, ध्यान, उपासना,
वो सब इस अंदरूनी खोज में मददगार है। वो साधन है जो हमारे मन को साफ करते हैं, एकाग्र करते हैं और हमें उस दिव्य चेतना के करीब ले जाते हैं।
और ईश्वर की ये सही समझ, जैसा पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था, ये सिर्फ हमें कोई आध्यात्मिक शांति ही नहीं देती, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, एक जिम्मेदार सदस्य बनाती है अपने परिवार का और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।
हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण तीनों के लिए जरूरी है। यही पूज्य गुरुदेव के विचारों का सार है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिसपे वो खुद सोच सकते हैं। अगर ईश्वर एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक कर्मफल का सिद्धांत है और हमारे ही कर्म हमारे भविष्य का, हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे छोटे फैसलों में, अपने विचारों में, अपने कामों में इस ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने जिम्मेदार बन सकते हैं, शायद इस पे सोचना, इस पे विचार करना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
बिल्कुल। इसी विचार के साथ पूज्य गुरुदेव के गहन चिंतन पर आधारित आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।